ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आज के प्रोग्राम में कोई आपने से पहली बार आ रहे हैं? अच्छा, आप दोनों पहली बार आ रहे हैं आज के प्रोग्राम में? आप पहली बार आ रहे हैं तो
सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था ऑटो माइंड कंट्रोल, उसमें बताया था कि कैसे आज जो है हमारे जीवन में हम कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पूरे विश्व में कई प्रकार की समस्याएं इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी नेशनल लेवल पे और पूरे वर्ल्ड लेवल पे कई प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हल नहीं किया जा, हल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ना, कई प्रकार की समस्याएं आज के युवकों में पाई जा रही हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसका रूट काउज जो हमने डिस्कस किया था उसमें ही किया था कि जब हम अपने सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन, हमारा हम कौन है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग शुड नो, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि इसका आंसर जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू ही प्राप्त हो सकता है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, किस लिए हम यहाँ आए हैं। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें अपने आप को कंट्रोल करना, अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की आवश्यकता है, मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो तब जाके हम अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट को बैलेंस कर पाएंगे, है ना। नहीं तो साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो विनाश कर सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमने डिस्कस किया था कि साइंस के साथ साथ हमें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है अपने जीवन में। तो स्पिरिचुअलिटी में हमने सिक्स सेशन कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें हमें सबसे पहले आपको एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाहते थे। सबसे पहले थ्योरी बताना चाहते थे, थ्योरी पहले, थ्योरी या स्पिरिचुअल थ्योरी, प्रैक्टिकल पहले थ्योरी जानने के बाद प्रैक्टिकल बताएंगे आपको कैसे करना है अपने जीवन में अप्लाई। सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, है ना, क्या क्या ऐसी चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले आपको शुरू में आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती है कि नहीं। तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप लोग अभी मशीन कोई मशीन नहीं डिजाइन करता है कि नहीं, अभी थ्योरी पढ़ाई जाती है ना। अब मशीन डिजाइन कर बाद में है ना, अप्लीकेशन बाद में बताया जाएगा। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी हमने आपको शुरुआत थ्योरी से, फर्स्ट सिक्स सेशन जो हमारा हुआ वो अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या है, आपको नॉलेज हम देंगे। नॉलेज मतलब क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या है, उसमें हमने सिक्स सेशन सेलेक्ट किया था। फर्स्ट सेशन था कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तब सेशन जो सीरीज था इसका नाम था डिस्कवर योर सेल्फ। तो अपने आप को डिस्कवर करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना आईना में अपना चेहरा अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको सूर्य की आवश्यकता है, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं हो तो आप आईना में चेहरा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। आप भी हैं आईना भी है लेकिन फिर भी आप नहीं देख सकते क्योंकि सनलाइट ही नहीं। उसी तरह से जब तक भगवान ने भगवान का जो लाइट नहीं आएगा हमारे जीवन में हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले गॉड को जानना है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विथ गॉड अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होता है किससे? गॉड से। द फर्स्ट क्वेश्चन कॉल दैट डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है? तो इस पर हमने चर्चा की फर्स्ट सेशन में, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो उसमें हमने डिटेल में बताया था, तो शॉर्ट में मैं उस स्लाइड को दिखाऊंगा, उन स्लाइड्स को जो कि हमने फर्स्ट सेशन में लिया था। उसमें कई प्रकार से हमने बताया था, कई वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स भी दिखाए थे। कोई थे फर्स्ट सेशन में? आपने आपको याद होगा कि हमने कई वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट्स भी दिखाए थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? हाँ वेरी गुड, आप लोगों को याद, इसका लाभ ध्यान से सुनते हैं। तो आइंस्टीन न्यूटन ये सब जो वैज्ञानिक थे, और हमने बताया कि जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो देर इज एन आर्टिस्ट बिहाइंड द क्रिएशन, है ना। देर इज क्रिएटर, देर इज लॉ मेकर, देर इज ऑर्डर एंड डिजाइन, है ना। तो कौन कर रहा है सब, है ना। तो उससे हमने डिस्कस किया था कि गॉड, दैट इज द गॉड एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट ऑल्सो। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये सब अपने आप नहीं हो सकता है, इसके लिए भगवान की आवश्यकता है। तो उस पर हमने डिस्कस किया था, है ना, कि कैसे वैज्ञानिक मानते हैं भगवान है। जैसे आइंस्टीन है, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, पुराने भी और नए भी, है ना। हुई द आर्टिस्ट, हुई द कंट्रोलर, कौन कंट्रोल कर रहा है द प्लैनेट्स को, देखिए न्यूटन ने भी माना है, न्यूटन के स्टेटमेंट दिखाए थे हमें, है ना। न्यूटन ने भी एक्सेप्ट किया है, ना? कि भगवान है। तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो रिवाइज शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए। और फिर हमने दिखाया था कि ऑर्डर और डिजाइन, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एटमिक स्ट्रक्चर, एक वेल डिजाइन है, जैसे डीएनए, है ना, आरएनए, एफसीसी, बीसीसी स्ट्रक्चर हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, है ना। सोलर सिस्टम लगता है डिजाइन किया हुआ है ना। तो ये सब से पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो कि संसार को कंट्रोल कर रहा है, इसने डिजाइन किया है, इसको चला रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति, दैट सुप्रीम इंटेलिजेंट पर्सन इज गॉड। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, व्हाट डू द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फील। उसमें देखा था आइंस्टीन का स्टेटमेंट था, देयर इज ए परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल नेचुरल फिजिकल लॉज, ये आइंस्टीन का कहना है। तो हम लोग आइंस्टीन भी मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पीछे से इसको कंट्रोल कर रहा है। तो केल्विन का स्टेटमेंट था, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो विज्ञान आपको फोर्स कर, यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, है ना। जैसे रामानुजन है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट रिप्रेजेंट्स अ थॉट ऑफ गॉड। देन मैक्स अंश बोरिस जेन, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, ही ऑल्सो सेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन पर्पस स्टेयर्स द बायोलॉजिस्ट इन द फेस वेर एवर ही लुक्स। द प्रोबेबिलिटी फॉर सच एन इवेंट एज द ओरिजिन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स टू हैव अकर्ड बाय शेयर चांस इज जस्ट टू स्मॉल टू बी सीरियसली कंसिडर्ड। मैक्स बोर, दोज हू से दैट द स्टडी ऑफ साइंस मेक्स अ मैन एन एथेइस्ट मस्ट बी रादर सिली पीपल। मतलब कि ये देखिए मैक्स बोर इनको नोबेल प्राइज में, ये भी मानते हैं कि अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि विज्ञान के अध्ययन करने से व्यक्ति नास्तिक बन जाता है तो ये गलत है, ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, विज्ञान के अध्ययन करने से व्यक्ति नास्तिक नहीं बल्कि उसका भगवान में और विश्वास बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इन वैज्ञानिकों ने, डेरेक बार्टन जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है 1969 में, इन्होंने बोला देर इज नो इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, साइंस शोज दैट गॉड एग्जिस्ट। लेकिन उनके विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान है। तो इसलिए हमने इन वैज्ञानिकों को कहते हैं और मना की जो गीता में बताया गया है भगवान का कॉन्सेप्ट, ये कल्पना नहीं है बल्कि क्या है, सच्चाई है, वास्तविकता है। और आगे आ जाएंगे तो अच्छा, तो ये वास्तविकता है, भगवान का रूप क्या है, वास्तविकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कम दैट अगर गॉड है तो हम उनको देख क्यों नहीं सकते, देख क्यों नहीं पाते ना। इसे हमने डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट क्या डिस्कस किया था, प्रमाण बताए थे ना, प्रमाण अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो अभी जो हमारा प्रमाण मतलब डायरेक्ट मतलब आंखों से देखना कान को, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों को देख के समझ, पांच इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि पांच हमारे जो इंद्रियां हैं इनमें डिफेक्ट्स हैं। अब देखिए हमारी आंखें उसी में देख सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन हम देख नहीं सकते है ना, हम नहीं देख पाते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखों में उस तरह से हमारी आंखें जो है लिमिटेड रेंज में काम करती हैं। कान भी है ना 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इसी बीच में फंक्शन करता है, और आंखें जो है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इसमें कार्य करती है, उसके बियॉन्ड हम लोग अंधे हैं, उस रेंज के बाहर हम लोग अंधे हैं, हम नहीं देख सकते। तो इसलिए ज्यादातर इस संसार में ज्यादातर चीजें हम नहीं देख सकते, और जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो भी परफेक्टली नहीं देख पाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया था सूर्य का, सूर्य को हम लोग देखते हैं कि नहीं, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं तो कितना बड़ा आपको दिखाई देता है, इतना बढ़ रही है, लेकिन जो देख रहे हैं वो भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो जैसे आप अपने हाथों को ऐसे देखेंगे ना, आपको पता है आपके हाथों में कई जीवाणु जो है वो घूम रहे हैं हाथों के ऊपर, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे आंखें अंधी है, एक रेंज से बाहर हम नहीं देख सकते, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है वही हमें नहीं पता है ना। तो इसलिए डिफेक्ट्स है हमारी सेंसेज में, और इसके कारण जो है हम इसी संसार की चीजों को नहीं देख पाएंगे, तो भगवान को देखने की तो बात ही दूर है। तो इसलिए बताए थे हम लोग कि भगवान को देखने का तरीका है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, दैट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ गॉड। दूसरा तरीका क्या है, ज्ञान प्राप्त अनुमान प्रमाण, अनुमान गेस वर्क जिसको बोलते हैं, से गेस करते हैं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड। क्यों, क्योंकि वो भी हम गेस भी तो करते हैं उसी बेसिस पे जितना हम देखते हैं, है ना। कोई व्यक्ति सोच सकता है कुछ भी जिसको देखा नहीं अनुभव नहीं किया है, सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए वो भी इम्परफेक्ट है। तो मेन रियल प्रोसेस ऑफ नोइंग गॉड इज शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब नॉलेज हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, ए परफेक्ट पर्सन जिसको सब कुछ पता है उससे सुनना है, जिसको इस संसार के बारे में हर चीज का ज्ञान है, जिसको हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे सब सब चीज के बारे में उसको पता है। और वो व्यक्ति कौन है, गॉड, गॉड जिसने बनाया इस संसार को वही बता सकता है कि उसने कहां पे क्या बनाया है। तो पिछले क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था वेदों के बारे में कि भगवान जब इस संसार की रचना करते हैं तो वेद देते हैं, वेदों की रचना करते हैं। जैसे कोई मशीन मैन्युफैक्चरर कोई मशीन बनाता है तो उसके साथ साथ क्या बनाता है, मैनुअल बनाता है ना। आप मोबाइल खरीदते हो उसके साथ मैनुअल आता है छोटा सा, वॉशिंग मशीन खरीदते हो उसके साथ मैनुअल आता है ना। उसी तरह से भगवान जब मनुष्य की रचना करते हैं, जब ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसके साथ एक मैनुअल और दैट मैनुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बताते हैं कि कहाँ पे क्या बनाया मैंने, व्हाट आर द डॉन्ट्स, व्हाट आर द डूज एंड डॉन्ट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो कई लोग इस बात को तो उस वैदिक लिटरेचर में हमने, तो आज का टॉपिक वही है इनफेलिबल वैदिक विजडम, जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। समय तो कम है, 6 बजे तक हमें टर्मिनेट करना है प्रोग्राम को, है ना। आज थोड़ा जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक वीडियो भी है, कई वीडियोज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को आज। तो आज थोड़ा हम फटाफट आगे बढ़ेंगे ताकि टाइम का कवर कर सकें। इनफेलिबल वैदिक विजडम आज का टॉपिक है। आज का फर्स्ट आपका असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज दैट यू नो ऑफ फॉर देयर स्पेशल एबिलिटीज, एग्जाम्पल ईगल आई साइट, एंड फाइंड आउट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। कई प्रकार के जानवर है ना, पशु, तो हर पशु में कुछ स्पेशल चीज पाया जाता है ना। जैसे कि ईगल बाज है, बाज का आंख बहुत तेज होता है, 8 मिनट दूर से भी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 8 मिनट दूर से, हम 200 मीटर की दूर से भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन बाज जो है वो 8 मील ऊपर अगर आकाश में उड़ रहा है वहां से देख सकता है अपने शिकार, वहां से देख सकता है। तो
8 मील तो क्या सूर्य है, ये तो 8 मील से भी ज्यादा है, लेकिन ये तो हम देख सकते हैं
डिग्रीज होते
हैं, आप देख सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं देख सकते ना। आपको तो केवल लाइट दिखाई देता है,
दूरी के अनुसार हमें साइज भी डिपेंड करता है।
दैट्स सेपरेट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप देख पाते हो लेकिन आप नहीं देख पाते हो। आप देख पाते हो सूर्य को, सूर्य पे क्या है
वो चीज नहीं देख पाते,
वही बता रहे हो ना, आप नहीं देख पाते हो। आप एडमिट क्यों नहीं करते कि आप नहीं देख पाते, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो हम देख पाते हैं। अब यहाँ अमेरिका आप देख पा रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं देख पा रहे, जब अमेरिका ही नहीं दिख रहा सूर्य क्या दिखेगा, तो बहुत दूर है। तो हम लेट अस एडमिट आवर वी हैव फॉल्ट डिटेक्शन आवर सेंस, इट इज नो डाउट अबाउट दैट, है ना। वी शुड एक्सेप्ट, देन ओनली आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो हम डिबेट करते रह जाएंगे। इट्स ए फैक्ट, इट तो साइंटिफिकली प्रूवन है, हम हर चीज को नहीं देख सकते, ये तो क्लियर है। तो ह्यूमन स्पीसीज हमारे शरीर में, और जैसे कई एनिमल हैं जिनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज हैं, बहुत स्पेशल क्वालिटीज हैं, तो जो कि मनुष्य में नहीं है। जैसे एग्जांपल बताइए, एनी एग्जांपल,
उल्लू सर आपने देखा,
उल्लू, हाँ उल्लू, चींटी, चींटी में क्या है, हाँ स्मेल, डॉग में भी होता है ना,
स्नेक में जो फील करता
है, स्नेक
जीभ से सूंघता
है, हाँ
ऑयल,
ऑयल
मीठा
होती है, हाँ कोयल, कोयल, कोयल की मीठी आवाज, चमगादड़ का क्या है, सुनने की कैपेसिटी, और चीता जो तो बड़ा तेज दौड़ता है, अगर उसको आप कॉमनवेल्थ गेम में लाए तो हर बार जीत के ले जाएगा गोल्ड मेडल, है कि नहीं।
हाथी में पावर
होती है, हाथी में वेट लिफ्टिंग, हर बार चैंपियन रहेगा, एवर चैंपियन हाथी, है कि नहीं। हम लोग कॉमनवेल्थ गेम करते हैं और इतने पैसा खर्च करते हैं, 70,000-80,000 करोड़ छोटी छोटी चीजों को उठाने के लिए, वो तो जानवर हमसे अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। ये कौन बड़ी बात है, एक से इसमें कमी करेंगे तो जानवर हमसे अच्छे हैं इन सब चीजों में, है कि नहीं। उसके लिए हम 70,000-80,000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, पता है कोई फायदा, जरूरत नहीं है इसका, तो कोई जरूरत नहीं। अब वो वेट उठाता है, उसका क्या फायदा, वेट उठाने के लिए हाथी को यूज कीजिए, उठा देगा उससे ज्यादा वेट उठाएगा, है कि नहीं। ये सब जो हाँ वही करे तो अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं एनिमल्स का, ये सब गेम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं जानवरों की, है ना। तो मनुष्य इसको बोलते हैं एडवांसमेंट, एडवांसमेंट नहीं है ये तो डिग्रेडेशन है, हम मनुष्य से जानवर को अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं।
घोड़ों की रेस होती है, भी देखने जाते हैं।
तो इस तरह से इस मनुष्य को क्या स्पेशल क्या है, मनुष्य के अंदर जैसे जानवरों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो मनुष्य के अंदर क्या ऐसा है जो कि स्पेशल बनाता है मनुष्य को? थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी पर जानवरों में भी
डिफरेंट,
लेकिन देखो जैसे कैट जो है, कैट को आप देखिए, उसको थिंकिंग एबिलिटी है, उसको पता है कि कब आपके घर में घुसना है और दूध पीना है, जब तक आप अंदर है नहीं आएगी, इसमें इंटेलिजेंस है उसको, है कि नहीं? जैसे आप बाहर जाएंगे वो आएगी और पी के निकल जाएगी आपके अंदर आने से पहले बाहर, इसका मतलब उसके पास इंटेलिजेंस है ना? तो हम ये नहीं कहते कि दे डोंट थिंक, दे ऑल्सो थिंक, एनिमल्स सोचते हैं, एनिमल्स के पास बुद्धि भी है, दिमाग भी लगाते हैं, है ना? हैं? तो क्या स्पेशल है बताइए, ये स्पेशल नहीं है, ये तो उनके पास भी है, यू आर वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है, हम लोग बदल सकते हैं अपनी आदतों को, हाँ, और
अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, लाइक जो थिंकिंग लेवल जो है, एक तो नेचुरल है, उनका तो नेचुरल लेवल इतना भी सोच सकते हैं कि कैसे ज्यादा पी सकते हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा ज्यादा यूज करके बढ़ा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं उनसे।
तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो ये डिफरेंस जो है शास्त्र में बताया गया, वैदिक शास्त्र में बताया गया कि मनुष्य में और जानवरों में क्या डिफरेंस बता रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन समान में ये पशु भी नाणाम धर्मो हित है साम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। आहार निद्रा भय और मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार चीज कॉमन है मनुष्य में भी और जानवर में। आहार निद्रा भय और मैथुन जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। आज देखिए हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं, ये सब करने के बावजूद हम एक चार चीज करते हैं, इसका उद्देश्य केवल ये चार चीज करना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडिंग, आहार निद्रा भय और मैथुन। अंतर बस इतना ही है कि जानवर जो है वो रोड पे है ना खाना खाते हैं और हम लोग जो है अपने रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, बस इतना ही, लेकिन जो टेस्ट आता है मजा जो है वो तो एक ही है, लेकिन ये थोड़ी कि जानवर सोने में उसको कम मजा आता है और हमें ज्यादा आता है, कई बार तो जानवरों को ज्यादा अच्छा है फैसिलिटी है ना। हमारे कई ऐसे सीईओ हैं जिनको कि नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है ना, एसी रूम में है ना गद्देदार बेड पे सोए फिर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि कुत्ता जो रोड पे सोया आराम से सोया है ना, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो इन सब चीजों में यहां तक कि हम देखते हैं कि जानवर ज्यादा अच्छे हैं हमसे। तो बता रहे हैं कि ये चार चीज तो मनुष्य भी, जैसे हम जितना भी एडवांसमेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं अंत में, यही चार चीज करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। कोई हायर गोल नहीं है जीवन का। तो बताते हैं कि जब अगर हम ये चार समान है ना, पशु भी नराणाम, पशु में और मनुष्य में ये चारों समान है, लेकिन जो स्पेशल है जो मनुष्य में है जो पशु में नहीं है वो है धर्म। धर्म ही तेसाम अधिको विशेष हो, धर्म एक ऐसा है, स्पिरिचुअलिटी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि केवल मनुष्य के अंदर है, जानवरों के अंदर स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट नहीं पाया जाता। दे कांट थिंक दैट, कभी कुत्ता बैठा हुआ सोच रहा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा मृत्यु के बाद, कोई थिंकिंग नहीं है उसका ऐसा, वो खाया जितना मिला उसे खाया और सो गया बस, फिर उठेगा खाएगा सो जाएगा, फिर उठेगा खाएगा सो जाएगा, इस तरह से पूरा जीवन बीत जाता है उसका। कभी ये नहीं सोचता है ना मुझे दुख क्यों हो रहा है इस संसार में, क्या मैं इससे बाहर नहीं उठ सकता, क्या इन सबसे ऊपर नहीं उठ सकता क्या। तो अगर मनुष्य के अंदर जब तक इसको था तो ब्रह्म जिज्ञासा इंक्वायरी, हायर इंक्वायरी, अगर मनुष्य के अंदर ये हायर इंक्वायरी डेवलप नहीं होता है तो मनुष्य ऑल्सो जस्ट लाइक एनिमल, धर्मे नहीं ना पशु भी समानम, जो धर्म से हीन है, धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म का अर्थ है इंक्वायरी, क्वेश्चन पूछना, रिचुअल, धर्म का अर्थ रिचुअल नहीं है। धर्म स्टार्ट होता है इंक्वायरी से, प्रश्न से, प्रश्न पूछने से। इसलिए आप देखिए पूरा भगवद गीता क्या है, प्रश्न और उत्तर है ना, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर इंक्वायरी, किसके बारे में, हायर पर्पस ऑफ लाइफ जो कि जानवर नहीं कर सकते। तो अगर हम अपना पूरा एनर्जी और टाइम केवल चार चीजों में ही लगा देते हैं पूरा जीवन, इसका मतलब हम जानवर से बेहतर नहीं है। तो वैदिक शास्त्र बताते हैं कि फोर एक्टिविटीज कॉमन टू बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं। ये देखिए ईटिंग, वी आर ऑल्सो ईटिंग। थोड़ा सा ऊपर टाइप कर सकते हैं बस ठीक। देन स्लीपिंग, स्लीपिंग सो कंफर्टेबली, देन मेटिंग है ना। सब टाइम पीपल से नो हाउ इट इज द एज ऑफ फैशन, इट इज सम व्हाई हैव गॉट यू नो। एक लड़का अगर तीन चार गर्लफ्रेंड है तो बोलते हैं बड़ा स्मार्ट है ना। अगर नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स इज अ क्राइटेरिया फॉर स्मार्टनेस देन कुत्ता इज मोस्ट स्मार्ट, ठीक है ना। सुअर सबसे ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसका तो कितनी गर्लफ्रेंड है वो गिनती भी नहीं कर सकता। तो दिस इज नॉट स्मार्टनेस फॉर ह्यूमन, इज एनिमलिस्टिक स्मार्टनेस। ह्यूमन लाइफ में स्मार्टनेस इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट मेक्स यू स्मार्ट फॉर ह्यूमन इज डिफरेंट, इज एनिमलिस्टिक स्मार्टनेस। लोग धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं तो शादी नहीं कर रहे हैं, धीरे एडवांसमेंट। आजकल लोग शादी भी नहीं करना चाहते, लिविंग टुगेदर कल्चर आ रहा है। तो हु लिव्स टुगेदर, कुत्ते लिविंग टुगेदर, कुत्ता दे हैव दिस कल्चर लिविंग टुगेदर, दे डोंट मैरी, देयर इज नो कल्चर ऑफ मैरिज। सो वी दिस एडवांसमेंट, मनुष्य से जानवर की तरफ हम विकास कर रहे हैं। धीरे धीरे कपड़े उतरते जा रहे हैं, तो कपड़ा कौन नहीं पहनता है, जानवर नहीं पहनते, नंगे घूमते रहते हैं, तो हम भी एडवांस कर रहे हैं। दीज आवर एडवांसमेंट, इज फुलिशनेस, दिस एक्चुअली मूर्खता है। तो इसको कहते हैं डिग्रेडेशन, एक्चुअली वी आर डिग्रेडिंग आवर सेल्फ, लेकिन हम तो सोचते हैं हम एडवांस कर रहे हैं। तो मेटिंग ये तो जानवर भी करते हैं और हमसे ज्यादा अच्छे से करते हैं ये सब, ठीक है ना। और उनको एड्स भी नहीं होता है ना। डिफेंडिंग है ना, लड़ाई झगड़ा, तो दे ऑल्सो डिफेंड, हम लोग भी डिफेंड करते हैं। डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च होता है, बजट पर सबसे ज्यादा भाग किस में जाता है, डिफेंस में जाता है। तो पर्पस सेम है, अपने आप को बचाना। तो ये चार चीज में ही हमारा जीवन बीत जाता है। तो जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है फिर, इन चारों चीजों में तो हम बराबर हैं। तो बता रहे हैं अंतर इतना ही है, कि तो आज अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज हैव रीच्ड द समिट ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट, है ना। बहुत ज्यादा एडवांस विकास हो रहा है, पैलेसेस हाउसेस देन स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, जेट प्लेन्स, लेटेस्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्पायर्ड ऑफ ऑल दिस एडवांसमेंट ये भी देखते हैं वेस्टर्नर्स और अमेरिकन्स आर अनहैप्पी, है ना। दे आर नॉट हैप्पी, डिसटिस्फाइड, फुल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, अबाउट अनहैप्पी, इस फैक्ट है। अमेरिका में बताते हैं कि 50% पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हो व्यक्ति, क्या शौक होता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का, कुछ तो प्रॉब्लम है ना लाइफ में, परेशान है। तो इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी व्यक्ति परेशान है, इसके क्या कारण है। कारण यही है कि दिस इज बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नथिंग बट डूइंग द सेम फोर एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे, दैट्स ऑल। दिस इज सोफिस्टिकेटेड एनिमल सिविलाइजेशन, ये फैक्ट। मनुष्य का जीवन दूसरे कार्यों के लिए मिला है, और अगर हम उसको इसी में लगाएंगे, जानवरों के नकल करने में लगाएंगे, तो फिर हम कहां सुख मिलेगा। मान लीजिए कि आप भूखे, आपको बहुत जोर से प्यास है, ठीक है, और आपको एक बूंद पानी दिया जाए, आपकी प्यास बुझेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। उसी तरह से हमारे मनुष्य जीवन में हमें जो सुख प्राप्त करने की कैपेसिटी जो दी गई है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है. वी शुड लुक फॉर स्पिरिचुअल प्लेजर. उसके लिए हमें डिजाइन किया गया, हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन किया गया. लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बूंद सुख लेने का प्रयास करते हैं जानवरों के, वो तो जानवरों के लिए. तो ये जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग का सुख है, जिस लेके तो आप, इसलिए आप कितना भी आप ईटिंग स्लीपिंग करो, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे. मेटिंग करिए, सेटिस्फाई नहीं होंगे. सेक्स लोग करते हैं, कभी एनीबडी कभी कोई सेटिस्फाई हो पाया है सेक्स लाइफ से? तो बताइए, नहीं बता.
तो
वट इज अकॉर्डिंग टू वी सी नो बडी इज लाइक दैट. इट्स नॉट पॉसिबल. नो बडी इज फॉलोइंग दैट. वेरी प्रैक्टिकल, लेट अस टॉक प्रैक्टिकली. क्या होता है, यू डू सेक्स एंड देन यू बिकम डिसटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, देन आफ्टर टू डेज अगेन यू आर हैंगरिंग फॉर द सेम, है ना? तो दैट इज नॉट सेटिस्फैक्शन एक्चुअली, दैट इज नॉट सेटिस्फैक्शन. कहां सेटिस्फैक्शन, मतलब एक बार आप सेटिस्फाई हो गए तो यू नॉट लुक फॉर अगेन. तो अगेन यू आर स्ट्रगलिंग, अगेन यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना? तो इसलिए दिस इज द रीजन मनुष्य का जीवन मिला है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए. हैप्पीनेस इज विद इन, यू कांट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड. एंड मैटर कांट गिव हैप्पीनेस टू सोल स्पिरिट. मैटर इज मैटर. कितना भी आप प्रयास करोगे उसे आपको सुख नहीं मिल सकता है. लगता है कि सुख है लेकिन थोड़ा सा मिलता है. तो इसलिए बताया गया है कि मनुष्य का जीवन मिला हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए. So to live a meaningful life, we have to first of all know who am I, who is God, and what is my relation with Him. यहाँ से शुरुआत होती है मनुष्य जीवन की इंक्वायरी, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना. ये अंतर है मनुष्य में और जानवर. एनिमल वो भी प्रश्न पूछते हैं, है ना? लेकिन वो क्या प्रश्न पूछते हैं? अबाउट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग. कहाँ से खाना मिलेगा? रोटी. वेर इज ब्रेड? वेर इज ब्रेड? Where is the place to sleep? Where is my nest? I can go and sleep. They can't inquire more than that. But a human being can inquire about life and death. What is the purpose of my life? मैं यहाँ क्यों हूँ? मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? कहाँ से आया हूँ? इसके बारे में समझ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है. और यहाँ से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है. Inquiry about life and death का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि who am I? मैं कौन हूँ? Who is God? भगवान कौन है? And what is my relation with God? Where from did I come? मैं, हम लोग यहाँ पे जन्म लिया इस संसार में, इससे पहले हम कहाँ थे? कहीं पे तो थे. और हम यहाँ मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? These are the questions for human being. मनुष्य इसको जान सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है इसको समझने का, जो भी जानवरों के अंदर नहीं है. सुनिए, पूरा सुनिए. तो यहाँ पे आपके पास च्वाइस है. योर च्वाइस नाउ विल डिसाइड योर ह्यूमन लाइफ. इफ यू इंक्वायरी, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, देन यू आर डिमांडेड टू हायर हैप्पीनेस. अगर आप इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको उच्च कोटि का जीवन मिलेगा, उच्च कोटि का हैप्पीनेस. और इफ यू डोंट इंक्वायर एंड इफ यू लिव लाइक एनिमल, देन बैक टू एनिमल किंगडम. जस्ट लाइक अगर आपको सपोज एग्जाम्पल कि एक बेटे को पिताजी ने उनको मर्सिडीज बेंच दिया, है ना? और उस मर्सिडीज बेंच को लेके गया और खेत में ले जाके हल जोत रहा है, फंस गई मर्सिडीज बेंच. क्यों? क्योंकि हल जोतने के लिए मर्सिडीज बेंच नहीं बनाया गया. तो 30 लाख का मर्सिडीज बेंच ले जाके खेत में हल जोत रहा है, फंस गई, पिताजी को कंप्लेन कर रहे हैं, पिताजी क्या हुआ, आपने कैसे गाड़ी खरीदी, चल ही नहीं रही, मेरे किसी काम की नहीं है मर्सिडीज बेंज। अच्छा तो क्या करूं, पिताजी देख रहे हैं, पिताजी आए देखे, देख रहे हैं गाड़ी है तो खेत में लगा दिया है ना, फंस गई है गाड़ी एकदम कीचड़। बोले अच्छा तो तुमको खेत जोतना है, बोला हाँ, तो ठीक है तो तुमको इससे अच्छी गाड़ी हम देंगे। तो बोले अच्छा तो दीजिए, तो एक मर्सिडीज बेंज तुम दे दो मुझे, तुम्हें एक ट्रैक्टर दे देंगे हम। तो 3-4 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद दिया। बोले ये तुम्हारे, तो बोला हाँ पापा बहुत बढ़िया चल रहा है गाड़ी, ये गाड़ी अच्छा है मेरे लिए। तो इसको कहते हैं कि कम बुद्धि। तो मनुष्य का शरीर और जानवर का शरीर इज जस्ट लाइक मर्सिडीज बेंज एंड ट्रैक्टर। मनुष्य का शरीर मिला है दूसरी पर, ये ज्यादा दुर्लभ है, ज्यादा कॉस्टली है, ये हमें मिला है लेकिन हम इसको जानवर के लिए के कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज मिला और ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिताजी क्या करेंगे, हमारे पिताजी भगवान है, बोलते हैं ठीक है अच्छा तुम्हें जानवर का काम करना है तो जानवर का शरीर लो, फिर मनुष्य का शरीर वापस ले लेते हैं और अगले जन्म में जानवर बनाया जाता है, तो तुम उसी में खुश रहो, तुम्हें क्यों दें हम मनुष्य शरीर, तो अगले जन्म में इसलिए एनिमल एनिमल बनते हैं। हाँ ऐसा होता है, सही बता रहा
हूँ।
कुछ लोग आदमी के बाद आदमी बनते हैं, कुछ लोग जानवर भी बनते हैं, कर्म के ऊपर है, इसीलिए डिस्कस पड़ेगा। अगर आप मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा, आप उसको मिसयूज करोगे, उसकी सजा मिलेगी आपको, देन अगेन आपको नहीं मिलेगा, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो वैदिक शास्त्र ऐसा बजाते हैं, तो ये नहीं पता कि न्यूज पेपर में क्या है, पर वैदिक शास्त्र समझाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, देखिए हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कुछ, लेकिन मैं अपने हिसाब से नहीं बता, हम लोग तो वो बताते हैं जो भगवद गीता भगवान बताते हैं, क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से बताएं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है कि नहीं, और फिर आपस में लड़ाई होगी, तो इसलिए हम अपने हिसाब से नहीं बताते, क्योंकि मेरा हिसाब तो बदलता रहता है। जब मैं बचपन में हम छोटे रहते थे, हमें लगता था कि मल खाना जो है वो सबसे अच्छा है, अपना ही मल खाते थे, और जब थोड़े बड़े हो गए तो हमारा ओपिनियन बदल गया, नहीं वो अच्छा नहीं था, वो गंदा था। अब थोड़ा बड़े हो गए तो वो भी जो बचपन का था वो गलत हो गया, अब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो आज जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा, तो हमारा ओपिनियन तो बदलते जा रहा है दिन पर दिन, तो उसको हम अगर ले कर सत्य मानेंगे तो फिर नहीं चल पाएंगे, इसलिए जो ओपिनियन कभी नहीं बदलता है वो है वैदिक नॉलेज। तो भगवद्गीता में ऐसा बताया गया है कि 84 लाख योनियां हैं, इसमें 4 लाख मनुष्य की योनि है, और अगर मनुष्य की योनि में व्यक्ति सफल नहीं होता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, तो उसके फिर से 80 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब जाकर उसको मनुष्य का योनि फिर से प्राप्त होगा। तो ये चक्र बताया गया, दिस इज साइंस। अब आप कुछ और बोल सकते हैं, आप कुछ और बोल सकते हैं, वो कुछ और बोल सकते हैं, इस तरह से हम बोलते रहेंगे तो इसमें कोई फायदा नहीं है ना, तो सत्य सत्य है ना? तो उसको हमें ऑथराइज सोर्स, इसलिए बोला शब्द प्रमाण है ना, ऑथराइज सोर्स से ज्ञात प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हम अपने मन से सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे तो फिर तो कभी हम सत्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें वैदिक नॉलेज दिया है। तो ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप द रीजनिंग पावर टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मनुष्य की एबिलिटी है, व्हाई एम आई सफरिंग, हमें दुख क्यों हो रहा है संसार में, एंड वेयर डू आई गो आफ्टर दिस लाइफ, ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस संसार में हर व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पता है कि नहीं? हाँ, तो मनुष्य को कैपेसिटी है कि इन कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, हमेशा के लिए, लेकिन उसको पहले प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तरीका अलग है। वो तरीका जो है वैदिक शास्त्र में बताया गया, वाई एम आई सफरिंग। इस संसार में कई प्रकार के कष्ट, इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ट्रूथ्स ऑफ लाइफ वीडियो का नाम है। थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगे, बट दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो आपको लगे कि यार पर इसमें जीवन की सच्चाई बताई गई है, तो आप डरिएगा मत, ठीक है, हिम्मत रख के हिम्मत करके देखिएगा, क्योंकि इसमें दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, इसको हम भूल जाते हैं, है ना। फिर से चलाना पड़ेगा, आ रहे
नहीं,
नहीं हो आ रहा है अपने आप, वो बंद हो गया ना, फिर से वो लैंप लाइट टाइम रहे। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे मनुष्य जो है, मनुष्य नहीं जानवर भी इन समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर कैपेसिटी है को इन समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए पार करके और हमेशा के लिए सच्चित आनंद जीवन को प्राप्त कर सकता है। सच्चित आनंद, सत मीन्स एटर्नल, और चित्त फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लीस, कंप्लीट ब्लीस हैप्पीनेस, उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है। तो यस,
estimated that the universe contains some 300 billion galaxies. Our Milky Way is just one of these. There are some 250 billion stars in the Milky Way. Our sun is just one of those. In other words, there are more stars in the universe than there are grains of sand in all the beaches of the world. And our sun is just one of those grains of sand. The world we live in is not even as large as one of those grains of sand. As for man, a tiny creature living on this earth, he is as nothing in the magnificence of this giant universe. an apple will rot in a very short time. Human beauty also fades easily. The skin, the most important component of human beauty, loses elasticity as time goes by, grows thin, and starts to sag. The shining, smooth skin of youth grows wrinkled with age. It loses all life, like dry mud. A young person's skin is taut, squeezed between the fingers and then released, it resumes its original state. But an old person's skin stays wrinkled. The hair turns white and falls out with old age. Every organ in the body receives its full share of the damage wreaked by old age. The nose and ears begin to sag, for instance. It is not only people's appearance that grows old, but their senses too. Since the nerve cells are not renewed, people suffer sensory loss as they grow older. They begin to have poor vision and poor hearing. The damage and decay visible in the human body is a striking example of the transitory nature of the life of this world. Celebrities, artists, film stars, and politicians whose beauty has amazed the world in their youth are very different in old age. They lose all that strength and beauty. For instance, sportsmen famed for their strength and stamina become weak and feeble in old age. The famous people you are now watching in youth and old age are a symbol of the transitory nature of this world. Skin will one day be exactly like that. And when you look in the mirror, this is exactly what you are going to see. Even at a very early age, while he is still filled with plans for the future, a person can fall ill and die. Millions of people in our time die while still young from cancer or similar incurable diseases. There are many viruses for which no cure has yet been found. And a tiny virus is enough to end a person's life. For instance, one of the vessels in the brain can burst for no good reason. This little mark you see on it shows the vessel that has done just that. Such a burst in the brain can do terrible damage. Increasing blood pressure kills the brain cells, and the individual may spend what remains of his life crippled, paralyzed, or mentally handicapped. Suffered severe brain damage and lost all his short-term memory. His academic career and dreams of becoming a lawyer all came to an end. He now forgot everything he saw and heard within 5 minutes. He was therefore obliged to take everything he did. He even had to listen to a tape to tell him whether he had just had something to eat or not. From planning to be a successful lawyer, he suddenly turned into someone who was so helpless he could not remember what he had done 5 minutes previously, in need of constant care and attention. This picture is of 21-year-old Henri de Lotbinière. At the time it was taken, he was a successful university student. By the age of 42, he was a successful businessman, the father of 2 children. One morning, he felt a numbness in his face. When he went to the doctor, he learned he had cancer in the left side of his face. The cancer soon blinded him in the left eye. Toshiko Sozaki from Japan was a happily married, successful businesswoman. One day, however, she was taken ill and suffered damage to one part of her brain. A self-confident and wealthy businesswoman one day, her illness left her mentally handicapped the next. She was unable to meet even her most basic needs. Since she had lost all her memory, the career she had worked for all her life no longer held any meaning. Attachment to the life of this world is, he must realize that the things he possesses have actually been given to him temporarily, to test him. It is God who created man, and it is only him who can protect him from all danger. If he so chooses, God can give sickness to and damage the human body in such a manner as to remind man how helpless he is. This is because the world is a place of trial created by God. In that test, those who behave pleasingly in the sight of God and exhibit the kind of morality He has commanded will win the right to infinite life in paradise. The haughty and those who prefer a few dozen years in this world to infinite life in the next will be unable to avoid trials, helplessness, and woes in the hereafter. This film, there will be young people or people who will die at a totally unexpected moment. You yourself could be one of them. This film may be your final warning to remind you of death and lead you to think about the hereafter. People encounter in their daily lives is nothing less than proof of the imperfect and transitory nature of the life of this world. This body needs to be constantly cleaned and cared for. People who consider themselves very beautiful or handsome and who grow full of pride as a result do not look at all good when they get up in the morning. A great many people regard these defects we have listed as quite normal. They do not wonder why they have been created so powerless and imperfect, in need of care and cleaning. Yet had God so wished, man would have had none of this weakness and imperfection. Other living things are not actually as needy as man. Flowers, for instance, are always perfectly clean and delightfully perfumed, and have no concept of looking after themselves, despite having emerged from the muddy soil. If God so wished, man could also be as clean as a flower at every moment of his life. Or else he might never fall ill, never experience pain and suffering. Yet man has deliberately been created imperfect, weak, and in need of care, in order that he should recognize his own helplessness. Everything in this world, created as a place of trial, is doomed to grow old, fade, and die. In Surah 57 of the Quran, God reminds us of the truth about the life of this world in these terms. Know that the life of this world is merely a game and a diversion and ostentation and a cause of boasting among yourselves and trying to outdo one another in wealth and children. Like the plant growth after rain which delights the cultivators, but then it withers and you see it turning yellow, and then it becomes broken stubble. In the hereafter there is terrible punishment, but also forgiveness from God and His good pleasure. The life of this world is nothing but the enjoyment of delusion. Alongside physical weakness and old age, there is another important proof of the transitory nature of the life of this world. Natural disasters. Meteors. Such a catastrophe has happened before. Scientists believe that a meteor strike was responsible for the extinction of the dinosaurs. A new meteor could strike at any time. Only one question remains. When? That menace which the world faces the whole time has been a source of inspiration behind Hollywood. The film, Armageddon, portrayed the terrible destruction that small meteors can cause. Similar theme. The tidal waves set up by a giant meteor falling into the ocean swallow whole cities. These scenarios are more than just fantasy, because our world really is exposed to such dangers all the time. in the earth as being the size of an apple, the layer we live on is the skin of that apple. That layer we live on is really very thin and weak. Even a small blow from outside would suffice to tear it. And the dangers are not just in the sky. At the same time, they are right under our feet. Right under that skin we live on is a layer of magma several thousand degrees in temperature. Sometimes rises to the surface as a result of volcanic activity. Our world is truly hanging by a thread. Magnificent mountains explode as a result of the volcanic pressure beneath them. There is no way of avoiding such a disaster. Magnificent structures, the splendid cities that people built so proudly, will collapse in an instant. Approximately every 2 minutes. But most of these are very light, and we do not even feel them. Yet if God so wished, there could be tremors so powerful as to affect the whole world, put an end to life on it, and destroy everything. In fact, the earth is entirely suited to earthquakes, with its fault lines and the gaps in the tectonic layers. People generally imagine that technological advances and the lessons learned from experience can prevent such disasters, whereas all the efforts to avoid them are sometimes in vain. One of the most recent examples of this was the violent earthquake in the Japanese city of Kobe in 1995. The Japanese had built the city with quake-resistant technology, so the shock tore it apart as if it had been The Japanese had spent billions of dollars on research into a system that would give prior warning of earthquakes, but were unable to predict this one. which came from an unexpected direction. The building that they said could stand up to the most powerful earthquake collapsed like paper mountain.
वहाँ से पावर चला गया ना, बीच में पावर कट होने से बंद हो जाता है. एक बार और दबाइए उसको, प्रेस कीजिए, फिर से पावर कट हो गया. लाइट चला गया, अभी आया नहीं. Anyway, so we can discuss by the time power comes. So, say, हमने ये discuss किया, इसलिए तो very consistent बताया गया है कि same चीज़ आप video में देख रहे हो, same चीज़ बताया गया help कि in front of the God's power, हम लोग अब भगवान की शक्ति के सामने देखो तो हमारे कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है. और जैसे कि आप देखते हो, अगर इस ब्रह्मांड को आप देखो, इस ब्रह्मांड में कितने कितने गैलेक्सी हैं. हाँ, 10^11 गैलेक्सी, 10^11 गैलेक्सी. हाँ, स्टार्ट हो रहा है. तो सोचिए कि आप, और ईच गैलेक्सी में 10^11 स्टार्स हैं, और उसमें एक स्टार छोटे सन बोलते हैं ना. एंड उसकी वो तो बताया जाता है कि अगर पूरे ब्रह्मांड की तुलना करें तो हमारा सोलर सिस्टम एक बालू के कण के समान है. इस ब्रह्मांड में जैसे समझ लो एक बालू का कण होता है ना, वैसे हमारा सोलर सिस्टम है. अब सोचिए उसमें हमारी क्या स्थिति होगी, फिर हमारा साइज क्या है इस ब्रह्मांड में. नेगलिजिबल, पर देखो हम कितना अपने आप को महान समझते हैं. वी थिंक दैट वी आर सो ग्रेट एंड वी कैन चैलेंज गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. हम सोचते हैं हम भगवान को चैलेंज करेंगे. कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं है, है ना. कोई पोजीशन नहीं हमारा, इसको कहते हैं अहंकार, है ना. तो ये जो है ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. वास्तव में हमारा कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप को इतना झूठा महान समझता है अपने आप, और भगवान से लड़ाई करने का प्रयास करता है. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है. अगर भगवान चाहे तो एक सेकंड के अंदर सब कुछ समाप्त हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी देखती की देखती रह जाएगी. जैसा आप अर्थ क्वेक का देखते हो, है ना. अगर अर्थ क्वेक आएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है बताइए? कुछ नहीं कर सकता. साइंस टेक्नोलॉजी को भी लेके जाएगा पूरा, और साइंटिस्ट को भी लेके जाएगा. हाँ, तो इसलिए साइंस बस इतना ही कर सकता है, बाद में बताया कि रिक्टर पैमाने पे इतना था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. आप देखो इतने बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई है ना, सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, मेसोपोटामिया, वो भी अपने बड़े प्राउड थे अपने कल्चर पे, अपने एडवांसमेंट पे. तो वो कितना बड़ा बड़ा पिरामिड बना रखा है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ उनका? फिनिश्ड. एक सेकंड के अंदर अगर भगवान चाहे तो एक सेकंड के अंदर सब कुछ समाप्त हो सकता है. और इस सिविलाइजेशन का भी यही होगा हाल. आप देखना, हम सोचते हैं वी आर एक्सेप्शन, हमने बड़ा एडवांसमेंट किया, हमें कुछ नहीं होगा. ऐसा नहीं. जिस तरह से अगर जिस तरह से पाप बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम रोक नहीं पाएंगे इसको तो ये भी होगा. इसलिए आप उतावल मत हुई है. ये कोई अच्छी बात नहीं है. तो हमें जो है सावधान रहना है. इसलिए हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सब, ताकि हम अपने आप को सुधार रहे, आपको सावधान रखें. मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझना है. भगवान ने हमें क्यों बनाया है ना. तो अभी मैं इसके लिए आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप लोग पूरा देखें. पूरा देखेंगे क्या हो गया? वो दूसरा है, वो तो बल्ब है. तो एनीवे, तो हम वेट करते हैं फिर लाइक आने दीजिए. तो वैदिक लिटरेचर भी यही बात बताते हैं, है ना, कि चार प्रकार का, अभी चार प्रकार के, सात प्रकार के जो समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, इसको बोलते हैं आधिदैविक, चार तीन प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आधिभौतिक क्लेश और आधिदैविक क्लेश, और इसके अलावा चार प्रकार की और समस्याएं हैं, जिसको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा जो आपने देखा, और व्याधि मतलब रोग, तो ओल्ड एज आपने देखा, रोग देखा और बुढ़ापा और मृत्यु भी आपने देखा। इसके अलावा तीन और हैं, जन्म, जन्म भी अपने आप में एक दुख है, हम लोग जन्म बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे तो सबसे ज्यादा दुख वाले दिन होता है, क्यों, क्योंकि जिस दिन जन्म होता है आप देखो कि कोई बच्चा हंसते हुए जन्म लेता है, क्यों, पेनफुल, हाँ पेनफुल है ना, हाँ, और असहनीय होता है, इतना दर्द होता है उस समय, हाँ? और उसके बाद जो है, और नौ महीने तक गर्भ पेट के अंदर कंपैक्ट करके बक्से के अंदर, मान लीजिए आपको नौ महीने बंद कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा, और एकदम बैंड करके ऐसे रहता है ना, दर्द होता है, बाद में हम भूल जाते हैं, अलग बात है ना, भूलने के कारण ये थोड़े कि आपको दर्द हुआ नहीं है, है कि नहीं, तो भूलने में तो हम एक्सपर्ट है, तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन जो दुख हुआ वो तो हमको सहना पड़ा ना, तो इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है इन सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसके लिए इसको बोलते हैं भाव, भाव बंधन, भाव सागर। इस संसार में जो जितने प्रकार के आप देख, इस वीडियो में देख रहे हो, ये नहीं कि केवल मैं भक्त हूं मेरे लिए ये दुख है, आपके लिए ये नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबको इस गुजरना पड़ेगा। हमारे भक्त गए थे कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने, उनके रेसिडेंस पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी का बिल्कुल अभी हालत खराब है, वो आपको पहचान भी नहीं पाएंगे, उनकी इतनी स्थिति खराब है, वो प्राइम मिनिस्टर है देश के थे, तो हर व्यक्ति को हेल्पलेस होना पड़ेगा एक दिन। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जब इस समस्या है तो क्यों ना इसको दूर करने का प्रयास किया जाए, और उसको सोल्यूशन बताया गया है, भगवान बताते हैं कि मनुष्य का जीवन इसको हल करने के लिए मिला है, है ना, जैसे कि, लेकिन हम क्या करते हैं, उधारे रे क्या कर रहे हैं आप, दिखा रहे हो ये सब डरा रहे हैं हमें, है ना, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना, वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक, हम, बट हमारा कहना है कि वी शुड नीदर बी ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक, वी शुड बी रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक ये रियलिटी, इससे अगर हम अपनी आंख को बंद करेंगे तो ये कहते अपने आप को धोखा देंगे। जैसे खरगोश, खरगोश जो होता है उसका एक, उसके अंदर एक बड़ा खराब होल है कि अगर उसके सामने अगर बाघ आ जाएगा ना, खरगोश के सामने, तो अपनी आंख बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि अगर आंख बंद कर दूंगा तो बाघ तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब बाघ नहीं है,
ऑल इज वेल हो गया,
है ना, और इस तरह से सोचते सोचते बाघ के मुंह में चला जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन वही खरगोश, उसके अंदर कैपेसिटी दे गई, धीरे भगवान द्वारा, अगर भागना शुरू करे तो बाघ उसको नहीं पकड़ सकता, खरगोश जो है इतना छोटा, एक तो छोटा है तो बाघ जो कूदेगा भी तो पकड़ नहीं पाएगा, और दूसरा तेज दौड़ता है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी कैपेसिटी को यूज ना करके क्या करता है, अपनी आंख को बंद कर लेता है। तो उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य को कैपेसिटी दी गई है कि मृत्यु रूपी बाघ से बच सके, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इससे बचने के प्रयास करने के बजाय हम क्या करते हैं, अपनी आंख को, नहीं मुझे नहीं सोचना है इन सब के बारे में, मृत्यु ये सब मत दिखाइए हमें, मत बताइए ये सब, हम नहीं सोचना चाहते, तो ये कहते हैं मूर्खता। तो इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ये सब दुखों से दूर होने का तरीका बताया गया है, कि हम अगर आध्यात्मिक जीवन का सहारा लें, कैसे इन दुखों से मुक्ति हो, कैसे इनसे पार किया जाए, तो अपने जीवन को हम इस तरह से ढालें ताकि हर कर्तव्य अपने ड्यूटीज को इस तरह से किया जाए इस संसार में, ताकि जीवन के अंत में हमें इन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो।
नहीं सर एक बात बताइए, आपने अभी 5-10 मिनट पहले बोला कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य जोनि में दोबारा आएंगे, तो ये तो सब दुखों का सागर है, दोबारा इसमें क्या करेंगे? इससे अच्छा तो कुत्ता भी बढ़िया नहीं है सर, उनकी वही सोच, खाने तक सीमित, सोने तक सीमित, सो जाओ खा लो, सो जाओ खा लो। अभी अगर हम अच्छा कर्म शुरू करो सर, सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आप हमें इतना ज्ञान दे रहे थे द बेस्ट इन बिटवीन अस, तो अगर हम अच्छा करेंगे दोबारा फिर इसी जमेल में आने से।
तो इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, इसमें क्या है, दो तीन ऑप्शन है। देखिए एक क्या है कि आप बहुत अच्छे कर्म करोगे तो आपको जो है इस संसार में आके फिर से इस संसार में कर्म करना पड़ेगा और अच्छा, और दूसरा अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप जानवर की योनि में जाओगे या ऐसी योनियां है जहां पे कि दुख होगा।
नहीं दुख तो फिर वो सोच ही नहीं पाते ना, वो तो कुत्ता है जानवर है, वो सोच इतना पाते कि मुझे खाना है
नहीं, सोचता है उसको होता है दुख। आप देखिए जाके कसाई घर में जाइए, आप कसाई घर में जाइए, आपको दिखाऊं, देखना चाहेंगे कसाई घर का दृश्य? आप देख नहीं पाएंगे, इतना दर्दनाक होता है।
वैसे वहां तो जा नहीं पाएंगे।
और जानवर जो है इतने कष्ट भोगते हैं कि आपको अगर दिखा दूंगा तो आप कभी नहीं जानवर बनना चाहेंगे। जानवर को अगर आपको बना भी दिया जाए ना तो आप ये मत सोचिए कि जानवर बड़े सुखी होते हैं।
कुत्ते को 10 मिनट पहले ही पता चल जाता है क्या नहीं दुकान आएगा।
देखिए
वो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं थी, क्योंकि वो सोता है इस तरफ काम,
कुत्ता
सोता
है। But for animals raised on modern industrialization farms and killed in slaughterhouses, it is called inescapable reality. Once you see for yourself the routine cruelty involved in raising animals for food, you'll understand why millions of compassionate people have decided to leave meat off their plates for good. They are crammed into filthy sheds by the tens of thousands, immersed in their own excrement among the corpses of other birds who died of heart attacks or stress. Some even die of starvation brought on by becoming crippled from growing so large, so fast, that their legs can't withstand the weight, which makes them unable to reach food. After being genetically manipulated and fed antibiotics to promote unnaturally rapid growth, their hearts, lungs, and legs often break down under the added weight. Heart attacks and crippling leg deformities are far too common. A PETA investigation found this farmer killing sick and injured turkeys by beating them with a metal rod and then tossing them aside, leaving them still conscious and suffering. This was deemed legal and standard by the industry.
Yes. और आप तो ह्यूमन राइट्स में चिल्ला भी सकते हैं, ये तो भी नहीं कर सकते।
Another 4 hours from the scene of this accident. This undercover video shows the standard method of gathering chickens for slaughter. After enduring weeks in filthy, crowded conditions, the animals are loaded onto trucks and taken through extreme weather conditions without food or water to slaughterhouses. Snapped into shackles by their fragile legs and have their throats slit, often while still conscious. Many are scalded alive in the feather removal tanks. If you thought it couldn't be any worse, think again. Between 5 and 11 hens are crammed into tiny wire cages during egg production. Well, to spread even one wing during their in these conditions to produce just one egg.
देखिए कितना सुख है,
कैस्ट्रेटेड एंड देयर हॉर्न्स चॉप्ड ऑफ,
देख रहे हो ना, तो हम सोचते हैं कि जानवर सुखी है, मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा सुखी है अगर देखा जाए तो। लेकिन मनुष्य जो है अगर मूर्खता करेगा तो जानवर से बदतर भी हो सकता है। इसको कहते हैं कि मूर्खता व्यक्ति जो है समझता नहीं है जीवन की सच्चाई को। तो हमें हम आते हैं अपने स्वागत से जहाँ स्टॉप किया था, तो प्रश्न पूछना चाहिए मनुष्य जीवन मिला है इन दुखों से बाहर आने के लिए। और तीन तरीके हैं, यहाँ से आप तीन डायरेक्शन, ये जंक्शन है, ह्यूमन लाइफ इज ए जंक्शन, जैसे रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है, जंक्शन मतलब तीन रास्ता कम से कम तीन। एक आप नीचे जा सकते हो जानवर के स्पीशीज में, दूसरा आपको इसी संसार में रहेंगे लेकिन सुख प्राप्त होगा कुछ समय के लिए, और फिर जो है जैसे ही आपका कोटा खत्म हो गया सुख का, पुण्य खत्म हो गया, तो फिर से दुख प्राप्त होगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वो है कि हमेशा हमेशा के लिए इस सुख और दुख के चक्र से बाहर निकल के और हमेशा हमेशा के लिए आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, जिसको अनंत सच्चिदानंद स्टेज को प्राप्त करना। उस स्टेज को भी प्राप्त किया सकता है जहां से कि कोई व्यक्ति संसार दुख संसार में वापस
वही मोक्ष होता है।
हाँ, उसको सबसे लोअर स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं मोक्ष, उसमें और भी हायर स्टेज होते हैं। तो मनुष्य का जीवन मिला है उस लक्ष्य को प्राप्त, इसलिए बताया गया है कि मृत्युर्मा अमृत गमय, इसका अर्थ क्या हुआ, हाँ अमरता की ओर ले चलो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अमरता ऐसा है, ये स्टेज है और हम सब उसी के लिए खोज रहे हैं, वही स्टेज खोज रहे हैं। अगर आप देखो अपने लाइफ को अगर केयरफुली आप स्टडी करो तो हम लोग खोज रहे हैं उसी स्थान पे जाना भी चाह रहे हैं। हर व्यक्ति संसार में कोई यहाँ पे नहीं बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता है कि नहीं, क्यों क्यों नहीं बनना चाहते, सब मरते हैं इस संसार में। तो इसका मतलब है आप कुछ चाह रहे हो, आप मरना नहीं चाहते, आप अमर रहना चाहते हैं कि नहीं, हम सब अमर रहना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, इसका मतलब है कि अमरता है कहीं, अमरता नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। आप इच्छा नहीं कर सकते किसी चीज का अगर वो चीज है नहीं तो, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो आप इच्छा करते हो वो चीज नहीं है, बताइए कोई ऐसा चीज है। आप जन्म लेता है बच्चा, उस पीने की इच्छा करता है क्योंकि कहीं पे पानी है, भूख लगती है क्योंकि खाना है, तो भगवान भूख बनाने से पहले आपका खाना का इंतजाम करते हैं और प्यास बनाने से पहले पानी का इंतजाम करते हैं। तो इच्छा आ ही नहीं सकती जब तक कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम सब अमर रहने की इच्छा करते हैं, ये इस बात यही इस बात का प्रमाण है, और अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है। इच्छा इटसेल्फ इज द प्रूफ दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, दैट डिजायर इज द प्रूफ दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। कहाँ है ये अलग बात है, हो सकता है आपके पास नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं तो। उसी तरह से यहाँ पे हम सब, कोई यहाँ पे है जो दुखी होना चाहता है, नहीं, क्यों, आपको किसी ने ट्रेनिंग दिया कि आपको सुखी होना है, किसी ने बताया नहीं, अपने आप बिनो ये नेचुरल हमें पता है कि हमें सुखी होना है, इसलिए एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो क्यों सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम ऐसा स्टेज है यहाँ पे कि हम हमेशा सुखी रहें, अदरवाइज वी विल नॉट लुक फॉर इट।
लेकिन कहाँ है वो नहीं पता। उसको समझने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना पड़ेगा, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें बताया गया है ऐसा स्टेट इज स्टेट ऑफ एवरलास्टिंग एंड एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस, दैट स्टेट इमॉर्टल स्टेट एग्जिस्ट एंड एक्चुअली स्पीकिंग वी आर ऑल इमॉर्टल। जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु, लेकिन हम इस संसार में जब अपने आप को शरीर मानते हैं, गलत स्वामी करते हैं और मानते हैं मैं शरीर हूं, तब जाके हम दुखों में फंसते हैं। तो इसलिए बताया गया कि वाई एम ए सफरिंग, तो ये जो मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। इससे फैक्ट ये संसार है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल।
पहली बताई कि सुख है वहां पे परमानेंट, लेकिन एक चीज है अभी दुख कह रहे हो, मतलब सुख तो तभी अनुभव करते हैं जब दुख है।
नहीं, नहीं। ऐसा नहीं,
अगर दुख ही ना हो तो सुख तो महत्व ही नहीं।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
बिल्कुल ही तो
समझने का प्रयास कीजिए। आपने अपनी बात बताई, मेरी बात सुनो, आज बात समझ गया मैं। कोई जरूरी नहीं है कि दुख होना चाहिए सुख होने के लिए। आपको अगर मैं हमेशा हमेशा के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो आप दुख में जाना चाहोगे? अगर हर तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो आप क्यों दुख में जाना चाहोगे? आप देखो इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सुख छोड़ के दुख में जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मजबूरी है, इसलिए हम उसको स्लोगन बना दिए हैं कि जब तक दुख नहीं हुआ तब सुख का मजा नहीं है, क्योंकि हमेशा सुख हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। रूल नहीं है ना, वही बताए। नहीं, इट्स नॉट रूल, ये रूल नहीं है, ये संसार में रूल है। लेकिन कोई जरूरत नहीं कि हर जगह यही। अपोजिट नहीं, इसका मतलब है आपको रोज अगर मिठाई मिले तो आप हमेशा सुखी रह सकते
हैं।
दुख क्या है? दुख जो है वो दुख डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, राइट टू अंडरस्टैंड, दुख डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, तो आप लोग अपने बोल रहे हो सुन नहीं रहे। जैसे लाइक इस कमरे में अगर अंधेरा, डजंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, डार्कनेस नहीं होता है कहीं, डार्कनेस का कहीं पे ऐसा है कि डार्कनेस जनरेट हो रहा है कहीं पे। अगर लाइट नहीं होता है क्या होता है? अंधेरा होता है। अपने आप में अंधेरा कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। उसी तरह से दुख नाम का कोई चीज नहीं, एब्सेंस ऑफ सुख इज, तो एक्चुअली सुख ही है, लेकिन जितना अगर सुख नहीं रहेगा तो आपको दुख लगता है। दुख नाम का अलग से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमको जो है, हमारा जो गोल है लाइफ का, अपने सुख को इंक्रीज करना है। आज भी आपको सुख है लेकिन उस लेवल का सुख नहीं है, इट कैन बी इंक्रीज, एंड कितना तक बढ़ाया जा सकता है? अनलिमिटेड। तो आप, हम जो है डिक्रीज क्यों करें? हमेशा वी कैन इंक्रीज आवर हैप्पीनेस। सुख और आनंद एक ही चीज है, आनंद और सुख कोई अलग नहीं, एक ही चीज है। मतलब कि आनंद क्या है? आनंद का मतलब है, सबसे पहले आप समझिए कि सुख है क्या, आनंद है क्या। तो आनंद का मतलब है कि आप जो है, आपकी जब भी आपको दुख होता है, इसका मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध जब कार्य होता है तो कहते हैं उसको दुख कहते हैं। परिभाषा है दुख की। कुछ भी चीज अगर आपकी, आपको जो अच्छा नहीं लगता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो क्या है? आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है तो क्या होता है? दुख होता है। और इस संसार में आप देखिए इम्पोजिशन से हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य होते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बुढ़ापा आता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें मृत्यु आती है, इसलिए दुख होता है। तो अगर हम ऐसे स्टेज में पहुंचे जहां पे कि चीजें जो है हमारी इच्छा के अनुसार हो तो हमें कोई दुख नहीं होगा और हम सुखी रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम सुखी रह सकते हैं। तो ऐसा जगह है, ऐसा स्टेज है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसकी इच्छा ही नहीं करते। दुख की इच्छा कोई करता है? क्यों नहीं करता? कोई नहीं करता। दिस इटसेल्फ इज द प्रूफ दैट कि दुख है नहीं। तो दुख का मतलब सुख की कमी बोलते हैं
मृत्यु के बाद ही वो परम सुख मिलेगा
नहीं
अभी भी स्थिति हो
नहीं आप इस बात वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाए रखे कारण है उसका देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं भौतिक जगत भौतिक जगत में हर चीज भौतिक तत्वों से बनी है इसका मटेरियल वर्ल्ड में फंडामेंटल एलिमेंट जो कि इसको बनाता है वो है मैटर और मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है इट इज टेम्पररी आप समझ रहे बात को इट्स टेम्पररी कोई भी चीज इस संसार में दिखाई जो कि हमेशा के लिए है एनीथिंग एनी एग्जाम्पल कुछ नहीं तो उस मैटर से जो आपको सुख भी मिलेगा वो क्या होगा टेम्पररी होगा इसीलिए इस संसार में आप कितना भी प्रयास कर लो हमेशा हमेशा के लिए आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते यही कारण है ये क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि मामू पे तो कौन से अशाश्वतम दुख हाल है ये संसार अशाश्वत है अशाश्वत का मतलब टेम्पररी और दुखाल है इसीलिए क्या है ये दुखाल है क्योंकि संसार टेम्पररी है इसलिए क्या हो गया दुखालय हो गया तो आप मान लो कि किसी चीज से आपको बहुत सुख मिल रहा है बहुत ज्यादा लेकिन जैसे ही वो चीज आपसे छूटेगी तो उतना ही क्या होगा दुख होगा क्यों क्योंकि वो टेम्पररी है लेकिन इसके अलावा अनदर वर्ल्ड है इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो चित्त जगत ये जड़ जगत है और एक चित्त जगत है तो चित्त जगत में एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्पिरिट इसलिए उसे स्पिरिचुअल बोलते हैं तो उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होता है देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम देयर टाइम डजंट इन्फ्लुएंस दैट वर्ल्ड एंड द ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य यही है इस तत्व को समझना और इस वर्ल्ड ऑफ मैटर से अपने आप को ट्रांसफर करना वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट
सर आपने कहा सुख और ज्यादा सुख और ज्यादा सुख जब ज्यादा सुख पे जाएंगे और मामले बाई चांस नीचे वाला सुख आया तो फिर वो सुख हमारा दुख हो जाएगा
यस
तो अल्टीमेटली हम दुख में ही जा रहे हैं
नहीं
तो हाई सुख फिर लोअर सुख फिर दुख हो गया हमारे लिए
लोअर कहाँ होगा
जब हाई सुख है
हाँ
लोअर सुख पे आएंगे तो फिर
लोअर पे क्यों आएंगे लोअर पे क्यों आएंगे आप क्यों आएंगे आपको हम हायर ले हम मैंने ये थोड़ा कि आपको लोअर पे लेके आऊंगा फिर इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गताम् वहां पे जाने के बाद फिर से कोई वापस
नहीं आता
दैट इज स्टेज यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम वहां पे जाने के बाद फिर से कोई दोबारा नहीं आता है वापस
ये एक बात लास्ट
ठीक है
तो सर ये सुख मिलता भी रहेगा तो फिर वो दुख हो जाएगा
क्यों दुख हो जाएगा भैया आपको सुख मिलेगा तो आपको दुख होगा मिठाई खाना सुख थोड़े ना है मिठाई इज अ मैटर वही बता रहा हूँ इसीलिए आप समझिए इस बात वो सुख नहीं है मिठाई खाना सुख नहीं है नहीं नहीं वही तो डिफरेंस है ना क्योंकि मिठाई मैटर स्वीट इज अ मैटर तो मैटर में आप कभी भी आपको हमेशा सुख नहीं मिल सकता है ज्यादा खाओगे डायबिटीज हो जाएगा आप उसकी बात छोड़ो ना यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज डिफरेंट उसको कंसेप्शन डिफरेंट है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन मैटर हम अब क्या कर रहे हैं मैटर से तुलना कर रहे हैं स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज द हैप्पीनेस ऑफ द सोल दैट इज डिफरेंट दैट इज ऑन द भाव दैट इज फीलिंग अंडरस्टैंड डजंट डिपेंड ऑन मैटर तो इसलिए ये जो आप तुलना कर रहे हो मैटर से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को ना ये गलत है नहीं मटेरियल हैप्पीनेस मैटर इज इटसेल्फ लिमिटेड देयरफॉर इट कैन नॉट गिव अनलिमिटेड हैप्पीनेस है ना तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट हम जिस ब्लिस की बात कर रहे हैं आनंद की बात कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट आनंद दैट इज आनंद ऑन द लेवल ऑफ सोल दैट इज ड्यू टू दैट इज वो आनंद जो होता है वो लविंग एक्सचेंज के द्वारा होता है यू अंडरस्टैंड लविंग एक्सचेंज दैट इज द सोल लाइक वन सोल एंड अनदर सोल एंड वन सोल एंड सुपर सोल दैट इज लविंग एक्सचेंज अंडरस्टैंड जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो जस्ट लाइक यू आर सिटिंग हियर एंड समबडी सर्व्स सकता है आपको वो सबसे है ना थर्ड क्लास का चीज ही आपको खिला, लेकिन अगर उसको प्रेम से खिला रहा है विथ लव यू फाइंड हैप्पीनेस, इजंट इट, दैट इज द स्पिरिचुअल ब्लिस। लेकिन वो ब्लिस भी संसार में हमेशा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो व्यक्ति जो है वो हमें खिला रहा है, ही विल नॉट बी ऑलवेज इवन इफ यू लव्स। तो इसलिए इवन इफ यू गेट स्पिरिचुअल ब्लिस इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट परमानेंट, यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इसलिए उसके लिए वी हैव टू गेट ट्रांसफर टू द चित्त जगत, तो दैट इज डिफरेंट हैप्पीनेस। तो इसलिए बता रहे जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यू आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल सुख है, मटेरियल सुख है। तो इसलिए एक्चुअली वो सुख है ही नहीं, वो इमेजिनेशन लगता है कि हमें सुख हो रहा है मिठाई खाने, इसे इमेजिनरी सुख है, इमेजिन होता है ना। क्योंकि जैसे आपको एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप मिठाई खाने की बात, आप जब खाते हो मिठाई, सब गुलाब जामुन आपने खाया, तो स्वीटनेस कहाँ है, गुलाब जामुन में है कि जीभ में है? गुलाब जामुन में अगर स्वीटनेस है या जीभ में स्वीटनेस है, मिठास कहाँ है? अगर जीभ में है अगर मिठास, फिर अपने आप खाइए, टेस्ट कीजिए मिठास। इसका तो कहाँ है मिठास? अगर गुलाब जामुन में है, अगर गुलाब जामुन है तो जीभ काट देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जोक नहीं है, ये बहुत सीरियस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, समझने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली इट्स ए इमेजिनेशन, बिकॉज सेंसेस भगवान ने इसे डिजाइन किया मेटेरियल सेंसेस कि लगता है कि इसमें हैप्पीनेस, न तो गुलाब जामुन में स्वीटनेस है और न ही जीवा में स्वीटनेस है। इट्स जस्ट ए स्टेट ऑफ इमेजिनेशन जो एग्जिस्ट करता है इस संसार में आउट ऑफ इमेजिनेशन। तो इट्स ए डीप टॉपिक, इसमें हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे, है ना, बहुत डीप है, नॉट सो इजी। तो इल्यूजन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इल्यूजन कॉन्सेप्ट है, इज जस्ट लाइक इन ए ड्रीम, इन ए ड्रीम यू आर ईटिंग गुलाब जामुन, यू फील हैप्पी और नॉट, उस समय लगता है, लेकिन वास्तव में आप खुश हैं उस समय, वास्तव में आप खा रहे हो गुलाब जामुन, नहीं खा रहे हो, तो कहां पे हो रहा है, मन में हो रहा है, और मन में भी हो रहा है लेकिन आपको खुशी मिल रही है। इस तरह से अगर ड्रीम में आपको कोई मार रहा है, पिटाई कर रहा है, तो आपको दुख होता है कि नहीं? लेकिन आप उठते हो तो क्या होता है, आप डरे हुए रहते हो लेकिन आपको कोई पिटाई नहीं कर रहा है। तो वास्तव में सुख और दुख जो है वो इमेजिनेशन लेवल पे होता है, भौतिक सुख। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो होता है दैट इज रियल है, वो सोल के लेवल पे होता है।
सिर्फ इमोशन का ही चक्कर है सब सुख दुख अपना जो हमें जो
yes, करेंटली जो सुख दुख मिल रहा है भौतिक सुख
भौतिक जगत की तो बात क्या है,
चित्त जगत की बात, भौतिक जगत में जो भी सुख आपको प्राप्त हो रहा है ये इमेजिनेशन के लेवल पे, यस इमेजिनेशन के लेवल पे। इसलिए आप देखिए कि एक व्यक्ति के लिए जो सुख होता है दूसरे के लिए दुख होता है। जैसे मान लीजिए आप गुलाब जामुन खाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप वही गुलाब जामुन अगर सूअर को ले जाके खिलाइए तो नहीं खाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके लिए वो, उसके लिए मल जो है वो बड़ा टेस्टी है, क्योंकि उसके लिए वैसा डिजाइन किया है उसका दिमाग। मीन्स दैट इज नॉट, गुलाब जामुन से जो हैप्पीनेस आता है नॉट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। अगर एब्सोल्यूट हैप्पीनेस होता तो सबको अच्छा लगता है, हाँ, यू अंडरस्टैंड पॉइंट। तो इसलिए ये जो हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट है जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है हमारा माइंड को, उसके अनुसार आप उस तरह की चीजों में हैप्पीनेस आपको प्राप्त मिलेगा, है ना। जैसे कॉकरोच आपको कैसा लगता है, सुंदर लगता है कॉकरोच है, आप अट्रैक्ट होते हो कॉकरोच से? लेकिन पता है आपको, अगर ही कॉकरोच जो होता है वो सी कॉकरोच को जब देखता है तो पागल हो जाता है उसकी सुंदरता पे। इसीलिए आप देखो इतना तेजी से प्रोक्रिएशन करते हैं, संख्या बढ़ती है उनकी, क्यों? बड़ा अट्रैक्शन है उसके लिए, कॉकरोच जो है बहुत सुंदर है, रिलेटिव इमेजिन, इज इमेजिनिंग दैट सी कॉकरोच इज वेरी, एक्चुअली शी इज नॉट, यू अंडरस्टैंड। इसलिए इस संसार में जो है ज्यादा तो इमेजिनेशन पे चल रही है, दे नॉट रियलिटी, है ना। इसलिए इमेजिनेशनरी हैप्पीनेस भी होता है, इमेजिनरी होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल रियलिटी। सो व्हाई एम आई सफरिंग, दैट इज अ क्वेश्चन, एंड वेयर डू आई गो आफ्टर दिस लाइफ। ये जो जो दो क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है वो हम अपने तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते, इसके लिए हमें जो है भगवद गीता का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बियॉन्ड आवर सेंस परसेप्शन ज्ञान है। आप मृत्यु के बाद कहां जाओगे, इसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। और हम लोग दुख क्यों झेल रहे हैं संसार में, इसका भी कोई उत्तर नहीं, बस झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं, कैसे इससे बाहर जाए,
अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर निकल के जब बाहर का बात करते तो हमें दुख होता है, अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा।
यस, अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे तो भी दुख होगा,
क्योंकि हमें ऐसा लगा किसी के दबाव में काम कर रहे
हैं। आप सुनिए बात को, अपने दुख तो है, चाहे अभी अधिकार क्षेत्र में रहिए उससे बाहर रहिए, दुख है, हर व्यक्ति को दुख है। आपका शरीर ही है जो कि आपको दुख दे रहा है, आपको रोग होगा तो क्या आप अधिकार क्षेत्र में बाहर हैं? तो इसलिए यहां पे ये प्रश्न जब हम पूछते हैं तो अब जाके हम मनुष्य के स्तर पे आते हैं, अदरवाइज वी आर लाइक एनिमल्स। एनिमल्स नहीं प्रश्न पूछते, ठीक है चलो चल रहा है, दुख होता है सुख होता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों टेंशन लेने का, चलो लाइफ ऐसा ही। वो हल करने का प्रयास नहीं करता सिचुएशन को, लेकिन मनुष्य के अंदर एक एक विकसित बुद्धि दी गई है ना, इंटेलिजेंस। हम अपनी बुद्धि का कितना परसेंट यूज करते हैं, इसका मतलब हम पूरा यूज नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैसे यूज करना है। तो हायर हैप्पीनेस को डेवलप करने के लिए बाकी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हमें जगाना है, उसके लिए कैपेसिटी दी गई है भगवान के द्वारा, उसको हम अगर यूज नहीं करेंगे, दिस रिक्वायर सटल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, तो उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि दी गई है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, रखे रखे सड़ जाता है, हम मर जाते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक जीवन में आओगे तो आपका आध्यात्मिक इंटेलिजेंस जागृत होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, और देन यू कैन एक्सपीरियंस द रियल हैप्पीनेस विच इज विदिन, दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ द सोल। टुडे वी आर गेटिंग हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी, बट दैट टाइम यू विल गेट द हैप्पीनेस ऑफ द सोल, दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस। व्हाई एम आई सफरिंग, इस पर हमने डिस्कस किया था, अभी देखा कि हम सब दुख झेल रहे हैं, इस बात को एवरीबॉडी एक्सेप्ट, वीडियो में भी आप सबने देखा वही चीज, तो इसको मैं जस्ट आई विल गो थ्रू द स्लाइड्स। हम लोग हमेशा जुआ रहना चाहते हैं, है कि नहीं, कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता, बट वेरी सून वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड एंड आवर बॉडीज बिकम वीक एंड फ्रेल एंड नो लॉन्गर लुक ब्यूटीफुल। You want to remain healthy?
Why not?
But much against our wish, we encounter diseases. Pain. Disease. Starvation. Death. So question comes that why am I suffering? This is a very important question. But old age, disease and death. And where do I go after death? So ye prashna puchna chahiye. कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा न दर्शन, वन हु कैन परसीव बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज आर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ही इज इन नॉलेज। ऑल्सो इफ यू एनालाइज आवर लाइफ वी आर कॉन्स्टेंटली टॉर्मेंटेड विद थ्री टाइप्स ऑफ क्लेशेस, आध्यात्मिक क्लेश, मिजरी ड्यू टू आवर ओन बॉडी एंड माइंड, हमारा मन और शरीर हमें समस्या खड़ा करता है हमारे लिए, जैसे कि सुसाइड लोग करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, ये सब हमारा अपना मन क्रिएट करता है, दूसरा कोई नहीं क्रिएट करता। दूसरा अधिभौतिक क्लेश, दूसरे लोगों के द्वारा। अगर आप अपने आप में खुश भी हैं, कोई बोलता नहीं मुझे अपने से कोई दुख नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप अपने आप में खुश हैं तो आप खुश रहेंगे, नहीं, मॉस्किटो आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपको काट देगा, मलेरिया मच्छर काटेगा, एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताया जाता है कि उसको मलेरिया मच्छर ने काट दिया, पूरे विश्व का विजेता था, मच्छर ने मार दिया उसको। आपको टेररिस्ट आपको खुश नहीं देखना चाहते, तो बिच्छू आपको काट सकता है। तो इस तरह से अधिभौतिक क्लेश और इसके अलावा आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, अधिदैविक मतलब सुपर नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि हमने दिखाया था वीडियो में, आपने देखा डिजास्टर मिजरी आर नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर इंस्टेंस सीवियर कोल्ड, हॉट वेदर, थंडर बोल्ट, अर्थक्वेक्स, टोर्नेडोज, ड्रॉप्स एक्सेट्रा। तो इन सब समस्याओं का कोई साइंस के पास समाधान नहीं है। जस्ट लाइक डेथ, डेथ का क्या समाधान है? कोई सोल्यूशन नहीं है। ओल्ड एज का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं। जब ओल्ड एज आएगा वैज्ञानिक को भी बूढ़ा होना पड़ेगा, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो। और जो ओल्ड एज के समय जो दुख होता है, ऐसा नहीं है कि मैं वैज्ञानिक हूं तो मुझे नहीं होगा, जो दुख है उसको तो सबको होना ही है, चाहे कितना भी बड़ा रिसर्च। जैसे अभी विश्व का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इज हुई स्टीफन हॉकिंग, उसका क्या स्थिति है अभी? चेयर पे पड़ा रहा तो बोल भी नहीं सकता। भगवान उसको बता रहे हैं कि देखो तुम कितने हेल्पलेस हो, और फिर भी वो बड़ी बड़ी थ्योरी हाँकता है, वो खुद ही दुखी है। अब देखो अपनी समस्या को हल ही नहीं कर सकता, और ब्रह्मांड को समझने का प्रयास, सॉल्व योर प्रॉब्लम इफ यू आर सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, नो यू कांट, यू आर हेल्पलेस। तो इट डजंट एक्सेप्ट दैट गॉड इज ऑल पावरफुल सो इजीली, नो इज कॉल्ड फूलिशनेस। तो हमें एक्सेप्ट करना है अपनी हेल्पलेसनेस। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया है लेकिन अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाया है, और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि तो कृष्णा बताते हैं दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स, ये हमेशा रहेंगे। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्पिरिचुअल पाथ, उसका अपना तरीका है। अपने आप को स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल प्रोसेस का पालन करके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके प्योर करना, अपने को समझना, क्योंकि एक्चुअली समस्या है ही नहीं, हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसलिए समस्या लग रही है। अगर आप अपने आप को रियलाइज कर लो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा को कोई रोग नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं होता। द सोल इज एटर्नल, सच्चित आनंद। तो द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर सच्चित आनंद, देयर इज नॉट अनहैप्पीनेस फॉर यू।
कैसे होगा सर ऐसा?
इट्स नॉट इजी। आप पढ़ाई इजी है, 24 साल तक आप पढ़ाई करते हो, रात रात भर कितने परीक्षा पास किया आपने अभी तक बताइए? 25 साल तक आप लोगों ने पढ़ाई की, कम से कम 1000 एग्जाम्स तो पास किया ही होगा, ठीक है? नहीं, क्या ये इजी है? और जब भी आप जन्म लोगे हर बार 1000 एग्जाम पास करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ इज इजियर देन मटेरियल लाइफ, आप करके देखो, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें तो भगवान बताते हैं भगवदगीता में, जो प्रयास करता है मैं उसके साथ हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, मैं उसको इंटेलिजेंस दूंगा जिसके द्वारा वो मेरे पास आएगा। जब तक हम भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं है, तब तक हमें इम्पॉसिबल लगता है ये। और एक बार आप शुरू कर दोगे ना, आपको ऐसा आसान लगेगा कि इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो इसलिए हम इतना स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, संघर्ष तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं? तो क्यों ना इसी समय थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इसको भी ट्राई करें, है कि नहीं? दैट इज आवर प्रपोजल। आप लोग हर कार्य कर रहे हो, एनी वे यू आर स्टडिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, योर लाइफ इज गोइंग लाइक दैट, बट इन दैट भगवदगीता बताता है कि यू हैव टू टेक आउट सम टाइम टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, सो दैट यू कैन सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक रहेगा, हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अंत में दुख का सामना करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने, तो मेन गोल ऑफ लाइफ इज टू सॉल्व दिस। गेटिंग जॉब एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल, बट गेटिंग जॉब एंड गेटिंग मनी एंड देन ईटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन पासिंग स्टूल एंड देन अगेन ईट एंड पास स्टूल, ये कोई पर्पस हुआ लाइफ का? नो। So eating means that eating and then chant Hare Krishna, practice yoga and realize your real purpose, how to go back to the spiritual world, chitta jagat. उसके लिए प्रयास करना। तो खाना है, खाने के लिए क्योंकि खाएंगे नहीं तो आप कैसे करोगे योगा, है कि नहीं? तो उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना है, जॉब करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन खाने के बाद योगा न करके अपने रियल पर्पज को भूल के केवल खा रहे हैं और वी आर पासिंग स्टूल ईटिंग पासिंग स्टूल ईटिंग पासिंग स्टूल, और जिसके लिए हम आए इस संसार में वो काम करेंगे और हम तो मर जाते हैं मरने के साथ। जितना डिग्री होता है जितना पैसा होता है सब यहीं का ही रह जाता है, हमारे साथ नहीं जाता है।
सर आपने कहा है कि जैसे कि हमने कभी उसको फील किया इसलिए हम उसको डिजायर करते हैं, तो फिर आखिर सर जब हम उस स्टेज पे थे तो फिर हमें सर यहाँ पे क्यों मतलब आया, क्या कारण था सर वहीं पर?
यस दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिजायर, दैट इज कॉल्ड यू हैव गॉट अ फ्री विल। फ्री विल है तो फ्री विल का अर्थ क्या होता है? बिना किसी रीजन के आप इच्छा करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्री। कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप बोलोगे मैं कुएं में कूदूंगा, कोई बोलेगा नहीं मत कूदो चोट लगेगा, नहीं मैं कूदूंगा। क्यों कूदोगे? मैं चाहता हूं कूदना बस, मेरी इच्छा। यस यू हैव गॉट फ्री विल, यू कैन जंप इन द वे, दैट इज कॉल्ड फ्री विल, है ना? यस फ्री विल, दैट इज कॉल्ड मिस यूज ऑफ योर फ्री विल। अपने फ्री विल का जब आप मिस यूज करते हो तो आप गलत जगह पे आते हैं, और वही सी फ्री विल को अगर आप राइटली यूज करोगे तो आगे नहीं कर पाएगा। तो एक बार बताया गया कि वंस यू डू मिस्टेक दिस, एक बार जब समझ में आ जाता है फिर दोबारा नहीं। तो कहते हैं एक व्यक्ति को एक बार अगर दूध से मुंह जल जाता है तो सांस भी फूंक के पीता है। तो वंस we go back, then we don't come back again because we have experience, sufficient experience of this world. So like that. So this is the point. So our science can't solve all this problem. Temporarily it can cover. जैसे आपको बाल बूढ़े हो जाते हैं तो बाल काले उजले होने लगते, तो साइंस आपको हेयर डाई लगा लिया, बोला अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन कब तक? तो पहले जैसे महाराज दशरथ थे, जब उन्होंने आईने के सामने गए तो उनको एक बाल उनको पका हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि अब मेरा वानप्रस्थ का समय आ गया है, पुत्र राम को राजा बनाएं और चलते हैं आध्यात्मिक जीवन का पालन करने। लेकिन आजकल क्या होता है, एक बाल उजला दिखाई दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाई लगा लिया। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है ना। अभी नहीं, आप लोग ओल्ड नहीं, आप लोग तो पेट की गर्मी दैट इज डिफरेंट रीजन। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो उसको रियलाइज नहीं होता है, अगर वो आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाता है तो उसको समझ में नहीं आता, उसको समस्याएं आ रही है लेकिन उसको पता ये नहीं कि आपको जो समस्या बता रहे हो आप लोगों को नहीं होता है, ऐसा नहीं होता रहा है लेकिन कभी हमने इसे सोचा नहीं। जैसे इन्होंने बोला कि जानवर बनने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पता नहीं था, जब दिखाया तो समझ में आया, है कि नहीं? तो उसी तरह से जब हम चीजों को हम ऑलरेडी हैं दुख में लेकिन हम उसको समझते नहीं कि हम दुख में, और वैदिक शास्त्र इसी से हमें ऊपर उठाते हैं कि नहीं हमें इसे सॉल्व करना है। तो वैदिक लिटरेचर जो है वो इनका उत्तर नहीं है, जितने सारे प्रश्न हमने पूछे इसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। इतना विकास करने के बाद भी विज्ञान ये नहीं बता रहा कि हम कौन हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है विज्ञान के पास। हम कहाँ से आए हैं कोई उत्तर नहीं है, कहाँ जाएंगे कोई उत्तर नहीं है, भगवान कौन है, कौन इस संसार को चला रहा है, कोई उत्तर नहीं, इसका आंसर नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है इसका भी उत्तर नहीं है विज्ञान के पास, हम क्यों है इस संसार में, साइंस कांट आंसर दिस क्वेश्चन। हमें जी आप जो जीवन जी रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है वही पता नहीं, तो फिर क्यों जी रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं? तो इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल आपको वैदिक लिटरेचर में मिलेगा, परफेक्टली 100%। तो इसलिए अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, हु एम आई, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर है वी आर द सोल, स्पिरिट सोल, आत्मा. और टॉपिक का नाम रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, फैक्ट और फैंटेसी. मतलब कि आत्मा का अस्तित्व ये वास्तविकता है या कल्पना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. साइंटिफिक डिस्कवरीज है इस पर, आपको वीडियोज भी दिखाएंगे, उसमें बताया गया है, एग्जाम्पल्स हैं जो लड़के अपने प्रीवियस लाइफ को याद करते हैं किए हैं, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि जो आत्मा वास्तव में हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है. और देन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ मोर सीरियसली. तो अगला टॉपिक ये रहेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल. ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? क्लियर
सर? ये वीडियो मिल सकती है?
हाँ, क्यों नहीं. वैसे तो और भी कई वीडियो दिखा दी, लेकिन बाद में आपको दिखा सकते हैं. वेदों के बारे में और भी चीजें बताई गई हैं वीडियोज में, रिसर्च हुए कि वैदिक लिटरेचर्स के कई लोग मानते हैं कि सोचते हैं कि नहीं वेदाज अंधविश्वास है, बिना पढ़े हुए अपने आप सोच लेते हैं. आप में से कितने लोगों ने वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है? पूरा यस, कुछ चीजें जानते हैं, हम उसी पे कंक्लूजन कर लेते हैं. कई लोग हैं, आप लोग तो कम से कम फेथ है आपके अंदर. कई लोग आप जाइए बोले हम विश्वास नहीं है वेदों पे, आपने पढ़ा है वेदों को, तो फिर आप ऐसे कैसे विश्वास नहीं है? पढ़ने के बाद तो दीप बात आती है ना, विश्वास करने की या नहीं करने की. भगवद गीता को कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं मैं विश्वास नहीं करता इसे. अरे पहले पढ़ो, उसके बाद बात आती है विश्वास करने की या नहीं करने की. पहले तो जानो कि किस पे विश्वास करना है कि नहीं करना है. और जब आप पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि दिस इज ए ग्रेट साइंस. जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा.
सर भगवद गीता भी वेद से ली गई?
भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत का एक चैप्टर है.
सर तो वेद में उसका भी उल्लेख है?
हाँ, वेद का ही हिस्सा है महाभारत, वेद से अलग नहीं है. इसमें वेद का मतलब ये नहीं कि केवल चार वेद, वेद का मतलब चार वेद और उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री लिटरेचर्स भी है वो भी वेद के अंदर ही आते हैं. वेद व्यास ने ही सारी की रचना की
ना. सर अगर इनका ज्ञान लेना हो तो कहाँ जाएं?
हम बता ही रहे हैं और ज्ञान कहाँ.
मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वेद का पूर्ण ज्ञान हो चाहूँ.
सारी चीजें आपको बताई जाएगी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं. उसके बाद आपको भागवत गीता पढ़वाएंगे. अभी क्या है कि आप लोगों को हम क्यों प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है ना. तो आप इसी चीज को मैं वेदों में पढ़वाऊंगा तो आपको बहुत किताबें पढ़नी पड़ेगी इसको समझने के लिए, है ना. हाँ, निचोड़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना. तो निचोड़ बना ताकि हमारे पास न तो उतना समय है कि आप है ना बैठ के केवल वेदों पढ़ने को, न तो आप संस्कृत को पता है ना. तो इसलिए आपको निचोड़ बताया जा रहा है ना, जो कि हमने रिसर्च किया है, हमने समझा है. इसको रिसर्च तो नहीं कहा जाएगा, इसको जो आचार्य बताए हैं इन्होंने भगवान से जैसा रियलाइजेशन होता है उसके बेसिस, तो उसी चीज को आपको बताया जा रहा है. वैदिक ज्ञान ही है ये, नहीं कि हम आपको इधर उधर कर, ये वैदिक भगवद गीता से बताया, इधर मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन. और जितने श्लोक मैंने बताए कि माँ हो कहते तो कौन थे, अशाश्वतम दुखालय, ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, भगवद गीता से बता रहा हूँ, है ना. वो तो ओम शांति से, उसमें कोई बेसिस नहीं है. वही बता रहे हैं कि कोई बेसिस नहीं है. आप कैसे मानने से थोड़े पति भाई हो जाएगा, मानने से अगर व्यक्ति हो जाता. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं मार रहा हूँ, आप अपने आप को मानो कि आप मैं नहीं मार रहा हूँ आपको, तो मानने से थोड़े हो.
बुराई करने से अच्छा है कि अपने धर्म का को अच्छा आगे बढ़ाओ. एक लाइन को अगर काटोगे उससे बढ़िया है कि अपने लाइन को आगे बढ़ाओ.
दैट्स करेक्ट. तो कोई हर धर्म का अपना एक जगह है, लेकिन उसको उस जगह पे ही रहना ठीक रहता है ना. लेकिन जो सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, ये टॉप मोस्ट रिलीजन. सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति रथोत्ति अहितुकी अप्रतिहता ही आत्मा. हाईएस्ट रिलीजन क्या है? द हाईएस्ट रिलीजन टू डेवलप लव फॉर गॉड कृष्ण, दैट इज द हाईएस्ट रिलीजन अकॉर्डिंग टू वेद व्यास. और बाकी सारे भी रिलीजन है लेकिन वो लोअर टाइप के हैं. वो किसके लिए है? तो जो लोग उस लेवल पे नहीं है हर व्यक्ति जैसे दूसरे क्लास का बच्चे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, सिक्स्थ सेशन जो लास्ट सेशन हमारा है उसमें इफ गॉड इज वन देन वाई सो मेनी रिलीजियंस, इस पर डिस्कशन करेंगे कि इतने सारे धर्म क्यों हैं और उसको कैसे देखना है, किस दृष्टि से देखना है सबको। ये जैसे दूसरे क्लास का बच्चा है, चौथे क्लास का बच्चा है, आठवीं क्लास का है और दसवें क्लास, ये नहीं कह सकते दूसरे क्लास का बच्चा गलत है, वो भी अपने लेवल पे सोचता है, उसको भी 100% मार्क्स मिलता है कि नहीं। और आप इंजीनियरिंग में हो आपको भी 100%, कभी आपको 70% मिलता है और दूसरे क्लास के बच्चे के सर्टिफिकेट में 80% रहता है कि नहीं, सर बात है, तो वो आपसे ज्यादा मार्क्स ले लिया लेकिन फिर भी वो कम बुद्धिमान है कि नहीं। तो उसी तरह से तो अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं रिलीजन की, रिलीजन आउट ऑफ फियर, रिलीजन आउट ऑफ डिजायर है, किसी इच्छा से धर्म का पालन करना या डर के धर्म का पालन करना, रिलीजन आउट ऑफ ड्यूटी, रिलीजन आउट ऑफ लव, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो इसलिए हमें किसी को बारे में अनजाने में नहीं बोलना है, उसको सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उसमें भी अपनी बुद्धि से समझना कि कौन ऊंचा है और कौन
नीचा है
और कौन किसके लिए है। एक्चुअली ऊंचा नीचा भी नहीं बल्कि कौन किसके लिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब अपने स्तर पे ऊंचा है।
सर सोचने का मतलब नजरिया अपना?
नहीं, सोचने का नजरिया नहीं है, जैसे कि जैसे दूसरे क्लास के बच्चा है, एग्जांपल दिया आपको, तो वो दूसरे क्लास के लिए उसके लेवल पे अच्छा है।
मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर कोई एक रूटीन को फॉलो करता है, जैसे वो जो इंसान बनाया होगा वो भी मेडिटेशन किया होगा, लेकिन एक लेवल पाने के बाद उसने अपना धर्म बना दिया।
हाँ, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने आप करोगे ना चीजों को,
त्रुटि
हो जाएगी, इसीलिए हमें गाइडेंस से चलना, इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत तक क्यों दिया, अगर हमें अपने आप ही करना है तो, है कि नहीं। तो उसमें बताया है कि ये इस तरह से करो, ये करोगे तो इस स्टेज पे पहुंचोगे, उसके बाद ऐसे करना है, उसके बाद ऐसे करना है, इस तरह से आपको कुल की प्राप्ति होगी। अब आप इसमें अपने तरीके से करेंगे तो फिर गलत रास्ते पे जाएंगे, है ना। तो ज्यादातर जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने तरीके के हैं, सेल्फ मेड रिलीजियंस, सेल्फ मेड गुरु एंड सेल्फ मेड रिलीजियन, इसलिए प्रॉब्लम होती है समाज में, है ना। तो कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है संभोग से समाधि की ओर, अब वो समाधि तो मिलेगा लेकिन एड्स वाला समाधि मिलेगा, एड्स के बाद ही समाधि मिलती है कि नहीं। तो भगवद गीता में भगवान ने क्लियर बोला है कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है नरक के द्वार है, ये नहीं लिखा कि संभोग से समाधि मिलेगी आपको। तो ये अपने तरीके से, ये आपका बनाया हुआ श्लोक है ना, भगवान का नहीं है, कृष्ण का नहीं है। तो इससे क्या होता है, एड्स बढ़ रहा है, देखो करो संभोग को।
मैंने उस बुक का थोड़ा 3-4 पेज पढ़ा था, उस बुक में भी सर यही दिया गया है कि हम सोचते ही हैं कि हमें संभोग से सुख हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सुख संभोग से नहीं, बस की शून्यता से हो रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्स एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम शून्य बिल्कुल मतलब
रॉन्ग फिलोसफी, इट्स रॉन्ग फिलोसफी, बिकॉज इट इज प्रोपेगेटिंग सेक्स, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। भगवद गीता में कहीं पे सेक्स प्रोपेगेशन नहीं है
सर, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा मतलब इंसान को इसे लॉस होता है, इसे करना नहीं चाहिए, इसी में खर्च सही नहीं है।
दैट्स ओके, बट व्हाई यू आर टेलिंग टू डू, अगर नहीं करना चाहिए तो बंद डायरेक्ट कराओ ना, करवा क्यों रहे हो, समझ में नहीं आ रही। आप बोल रहे हो करना नहीं चाहिए, फिर बोल रहे हो करो, तीन घंटे करो, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि
1100
और एक रेडियो, दैट्स ऑल, अपने मन से करना है। और इसके ऐसे लोगों के फॉलोअर भी मिलते हैं कि लोगों को भी अच्छा लगता है, चलो थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे और सेक्स करने का मौका भी मिलेगा, तो आध्यात्मिक होंगे लेकिन इसके बाद नरक में जाएंगे। नहीं नहीं, आपका फिलोसफी, वी आर डिस्कसिंग फिलोसफी। तो हर चीज का अपना एक तरीका है, भगवद्गीता में जो विषय है हर चीज के लिए परफेक्ट ज्ञान दिया हुआ है, तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो इस तरह के गलत चीजों में फंस जाते हैं व्यक्ति, ठीक है। हरे कृष्ण,
हरे हरे
आप सब। अपना अटेंडेंस देते हैं नाम पानी भरा है
इस वीक में ही यहाँ आते हो
वीक में एक बार
यहाँ आते हो यहाँ नहीं रहते
आज ही के दिन आते हैं
और बार कलाप करना चाहते
करेंगे आई विल गिव टाइम टू ऑल ऑफ यू मे बी अभी ये सेशंस खत्म कर लेते हैं पहले
इससे हम अगर प्रणम मैंने जो ज्वाइन करना चाहेंगे लाइक हम सुनना चाहते हैं हर एक वो बात हर एक वो चीज जो हमने चित जगत के लिए
उसको हम डिस्कस करेंगे उसके लिए बताऊंगा मैं हर चीज तरीके से बताऊंगा है ना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो अच्छा रहेगा आपका कौन से कॉलेज में है कैसे दूँ आपको कैसे
कैसे
किताब चाहिए आपको आपके पास कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप टाइप का है
तो
कौन कौन कोई किताब आपने पढ़ी है अभी तक कौन कौन
श्रीमद् भगवद्गीता पढ़ी
प्रभुपाद पूरा पढ़ लिए सॉफ्ट कॉपी तो मैं अभी दे देता है लेकिन हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है हार्ड कॉपी थोड़ा फिर भी जब तक इंतजाम कर सकते हैं ठीक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी बना देंगे तो आप लोग इशू करा सकते हो किताबों में ना जो भी पढ़ना है आपको एक दो सप्ताह समय दीजिए मुझे करेंगे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा एस्टेब्लिश करने में अभी एक दो तीन वीक के अंदर एक महीना लगेगा धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे ऑल्टर सजाना है भगवान की आरती उरती सब कर रखा करना है अभी तो क्या कीर्तन हाँ करेंगे आप शुरू में आए थे अच्छा करेंगे थोड़ा अच्छा से करेंगे पहले थोड़ा ज्ञान दे दें उसके बाद कीर्तन भी करेंगे है ना हरि बोल थैंक यू सर प्रभु मेरा लैपटॉप का बैग लाएंगे थोड़ा इन्वर्टर यहाँ पे रखना पड़ेगा, इन्वर्टर रखेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, है ना दशाता प्रभु? एक इन्वर्टर यहाँ पे, विदाउट इन्वर्टर हम नहीं कर पाएंगे। पावर पॉइंट होगा, पावर कट गया तो फिर सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा, है ना। Gracias.